जय नरसिंह देव भगवान की
जय
भक्तराज जलान महाराज की
जय
नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की
जय
राधा वृंदावन बिहारी की
जय
राधा मरम ललिता देवी की
जय
गौरांग महाप्रभु की
जय
शिल प्रभुपाद की
जय
हरि नाम संकीर्तन की
जय
जय गोप्रेमानंदे
हरि हरि वो
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय Hari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama Rama Rama, Hare 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 Rama
Sab gaiye
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe Radhe Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Gaurahari जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय श्री प्रह्लाद महाराज की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज तो अत्यंत महत्वपूर्ण श्री नरसिंहदेव भगवान का आविर्भाव दिन है, तो आप
हरे कृष्णा। आप सभी लोग कृपया बैठ जाइए। अभी प्रभु जी के माधव गोपाल प्रभु जी के द्वारा अभी 8:15 तक प्रवचन होगा। अब उन सुंदर कथा बताएंगे नरसिंहदेव के बारे में। आप सभी लोग शांति से बैठ के सुंदर कथा सुन सकते हैं। धन्यवाद।
सुंदर भगवान की कथा है, लेकिन पता नहीं कथा सुंदर है कि नहीं। तो भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिन है आज। तो सबसे प्रथम ये बात जब ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण हर युग में अवतार लेकर सारे जो दुर्जन हैं उनका विनाश करने के लिए और जो धर्म का संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे कहते हैं। तो हर बार जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो ये देवताओं का सहायक क्यों करते हैं, असुरों के विरुद्ध क्यों जाते हैं, ये सवाल किन किन के मन में उपजता होगा। तो उसको ये तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि भगवान पक्षपाती क्यों हैं। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं और हम सोचते हैं अरे मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, भगवान ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। और कभी कभी देखते हैं कि अरे बाकी लोग जो इतना सदाचारी नहीं है उनके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा है। तो क्या भगवान पक्षपाती है क्या, या भगवान एक बाजू लेते हैं दूसरे बाजू को भूल जाते हैं, ऐसा है क्या। तो परीक्षित महाराज कहते हैं असुरों को के विरुद्ध भगवान के मन में क्यों ऐसा कुछ है क्या, विरोध क्यों है, और सुरों को ही क्यों भगवान यानी देवताओं को ही क्यों सहाय करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको उत्तर देते हैं कि देखिए बराबर उल्टा सवाल आपके दादाजी ने पूछा था, माने किसने, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। उन्होंने पूछा था भगवान इतने सम कैसे हो सकते हैं, सुर और असुरों के समय समान। हाँ, आपने पूछा कि कैसे वो सदैव इंद्र का ही सहायक क्यों करते हैं, असुरों के विरुद्ध क्यों जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा, आपके दादाजी ने पूछा, जब ही शिशुपाल बहुत गाली गलौज कर रहा था भगवान को और उसको भगवान ने वरदान, उसकी माता को वचन दिया था कि 100 इसके अपराध में क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। तो शिशुपाल तो जन्मा ही था भगवान को गाली देते देते,
जो कुछ करता था बराबर उल्टा समझता था, कुछ भी किया, गोवर्धन पर्वत उठाया तो शिशुपाल बोलता था उसमें क्या है, एक पत्थर तो उठा लिया, और कालिया का दमन किया तो बोलता है कुछ तो पानी में घूमने वाले सांप को ऐसा दमन किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शिशुपाल जो है बहुत भगवान के विरोध में था, और खास करके उसका विवाह तय हुआ था, ये रुक्मिणी ने तय किया था रुक्मिणी देवी के साथ, लेकिन रुक्मिणी देवी का हरण कर लिया भगवान कृष्ण ने, तो बहुत ही आग बगुला हो गया और सोचने लगा कि अरे इसने तो मेरा तो सर्वस्व छीन लिया। और जब ही राजसूय यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो जब ही युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया कि सब देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वशिष्ठ हैं, अनेक मुनि हैं, और उनके सामने अगर पूजा का सम्मान किसको दिया, कृष्ण को दिया। तो जैसे ही कृष्ण को सम्मान दिया, ये शिशुपाल तो इतना उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जलन उत्पन्न हो गई, कैसे बड़े बड़े भगवान के विषय में अपवाद उठाने लगा कि अरे इसका ये तो ग्वाला है, इसको तुम अगर पूजा कैसे दे सकते हो। तो भीष्मदेव ने कहा अरे मूर्ख, ये ग्वाला नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। लेकिन फिर भी वो बड़बड़ाता गया, तो उसकी जीभ को रोकने का एक ही उपाय भगवान को समझ में आया, वो क्या था, तो सुदर्शन निकाल के क्या किया, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर उड़ा दिया। तो अभी सर ही नहीं बचा तो क्या बोलेगा वो। तो सबने देखा कि शिशुपाल का जो आत्मा है भगवान के चरणों में विलीन हो गई, चरणों में विलीन हो गई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। वो कहने का अर्थ ऐसा है कि जब भी भगवान जब अवतरित होते हैं उनके साथ वैकुंठ से उनके अंश भी अवतरित होते हैं, भगवान नारायण इत्यादि, तो उनकी सेवा करने के लिए उसमें जाके वो उनके चरणों में जाके विलीन हो गया। और जब भी भगवान अवतार समाप्त करेंगे तो भगवान नारायण को किधर छोड़ेंगे, वो जिस स्टेशन से उठाए थे उसी स्टेशन पे छोड़ना पड़ेगा ना, तो वैकुंठ पे छोड़ेंगे, और वैकुंठ पे जब भी छोड़ेंगे तो शिशुपाल भी उनके साथ सेवा करने के लिए वैकुंठ जाएगा, ऐसे हमारे आचार्य लोग बताते हैं। तो ये देखकर इतने विद्वेषी शिशुपाल को भी भगवान ने कैसा उद्धार किया, ये देखकर युधिष्ठिर महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा कि ये कैसे भगवान ने किया, और ये शिशुपाल कौन था कि इसका उद्धार कर दिया। तो ये बताने के लिए फिर नारद मुनि आगे ये कथा प्रारंभ करते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र हैं चतुष्कुमार जिनको कहते हैं, उन्होंने ये द्वारपाल जो थे वैकुंठ के जय विजय, उनको शापित कर दिया था कि कहा था कि आप या तो सात जीवन साधारण व्यक्ति के समान आप पृथ्वी तल पर बिताओगे, या फिर तीन जन्म असुर के। तो हमारे पास अगर ये चॉइस होता हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, किसका कौन सा चयन करते हैं, सात साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति की तरह सात जन्म निकालें फिर जाएं, है कि नहीं, असुर कौन बनना चाहता है। लेकिन ये जय विजय सोचते हैं इतना विरह कौन सहन करेगा भगवान से, क्योंकि भगवान के नित्य पार्षद हैं जय विजय, तो सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम वापस जाएंगे, चाहे भले असुर हो और भगवान के हाथ हमारी मृत्यु भी हो जाए कोई परवाह नहीं, उसमें भी हम भगवान को थोड़ा एक फाइटिंग मैच, टफ मैच दे देंगे, हाँ चुस्ती फूर्ती का जो वीर रस है उसकी आदान प्रदान करेंगे। तो ये शिशुपाल जो है, सो ये जो जय विजय जो है उनको तीन बार असुर बनने का क्या मिलता है, शाप मिलता है, और सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ में जन्म लेते हैं, दिति और कश्यप। तो जो हिरण्याक्ष है उसका तो भगवान विष्णु वराहदेव के रूप में वध करते हैं, उसके पश्चात हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना हृदय में रखता है, सोचता है कि अरे मेरे बड़े भैया को इस विष्णु ने मारा तो मैं भी उसका प्रतिशोध करूंगा। तो सोचता है कि अभी तो विष्णु बहुत बलवान है तो मुझे भी उसके जैसा बलवान बनना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करता है, वन में जाकर तपश्चर्या के लिए खड़ा होता है, और किसकी तपश्चर्या करता है, ब्रह्मा जी की, तो देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवताओं की उपासना किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं कि उनके प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वयं का कुछ जो उद्देश्य है, जो दुर्विचार है, उसको सफल करने के लिए कर रहे हैं। जैसे वृकासुर है, उसने शिवजी का उपासना क्यों किया था? बहुत साल उपासना करने लगा, अपने हाथ यज्ञ कुंड में डालने लगा, अपने पैर काटकर यज्ञ कुंड में डालने लगा, और अपना दाहिने हाथ से सर काट के अभी अर्पण करना करने वाला ही था। तो शिवजी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो क्या बोला, कृष्ण प्रेम चाहिए? नहीं, कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उसके मन में ऐसी विचार थे। तो देखो, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसी के पीछे, वरदान मिलने के बाद उसी उन्हीं के पीछे भागा, शिवजी के पीछे सर पे हाथ रखने के लिए। तो अच्छा हुआ कि शिवजी जिनके भक्त हैं वह भगवान कृष्ण स्वयं ही एक बटू का रूप लेकर उन्होंने बचा लिया। बोले कि अरे ये तो शिवजी जो हैं वो पता नहीं शमशान में घूमते हैं, उनकी बातों का कभी बात को सच मान के बैठा है। पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर अपने होम लैब में, घर की लेबोरेटरी में, पहले खुद के सर पर हाथ रखकर चेक कर पहले कि सही दिया है कि नहीं, उसकी बातों का क्या भरोसा। तो इस प्रकार से जो देवताओं के उपासक होते हैं वो क्या चाहते हैं, केवल स्वार्थ के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे यथा तरोर मूल निषेचने न, यानी आपको पेड़ को अगर हर डाली को हर पुष्प को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल मूल को पानी दे देंगे तो सब जगह पे पानी अपने आप पहुंच जाएगा। और लेकिन देवी देवताओं का अलग से उपासना करना किसकी तरह है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी है और उसके उसके साथ काम करने वाले कुछ छोटे छोटे अधिकारी हैं, तो छोटे अधिकारियों को घूस खिलाने की जैसा है देवताओं की उपासना करना अलग से, यानी कि तो बिल्कुल इसी प्रकार हिरण्यकश्यप उपासना करने लगा। पहले पानी पे जीता था, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा पे जीना चालू कर दिया, फिर सांस भी बंद कर ली पूरी, तो फिर उसका जो सारा मांस जो है वो गलने लगा, केवल हड्डी बच गई, और सारी जो सारा जो संसार है तप्त तो हो गया उसकी तपश्चर्या से। तो ब्रह्मा जी ने आकर विचार किया कि इसको मैं कुछ उसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। तो उसको पूछा कि क्या चाहते हो? क्या कहा उसने? कृष्ण प्रेम? नहीं, कहा कि मैं ऐसा स्पष्ट रूप से भी नहीं बताया, ब्रह्मा जी से के साथ भी छल किया, ऐसा नहीं बताया कि मैं विष्णु के साथ प्रतिद्वंद्व करना द्वंद्वी बनना चाहता हूँ इसलिए मुझे शक्ति चाहिए। केवल बोला कि आपने जिस जिसका सृजन किया है उनसे किसी से मेरी मौत ना हो, ऐसा करके कह दिया। तो ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते गए, क्योंकि उनको तो मालूम है कि भगवान कुछ ना कुछ इससे हल निकाली देंगे, कितने भी मैं वरदान दे दूं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप वापस आकर ब्रह्मा जी के वरदान से अत्यंत बलशाली बन गया था वो। तो जब भी जो ऋतु चाहिए उसको वो ऋतु वो आदेश करता था, वसंत ऋतु, अभी तुम्हारा अभी फल आने चाहिए, अभी अभी आम आने चाहिए। फिर जब भी वर्षा चाहता था तो शावर के नीचे नहीं जाता था, बोलता था, हे इंद्रदेव अभी वर्षा करो। तो जब भी चाहे उसको गर्मी होती थी तो सूर्यदेव को कहता था, अभी डूब जाओ। तो इस प्रकार से सारे देवताओं के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था हिरण्यकश्यपु ने। और उसका जो उनके जो पुत्र थे प्रहलाद महाराज, तो बिल्कुल विपरीत उनको लग रहा था। उन्होंने सोचा कि इसको मैं गुरुकुल में डालकर बड़ा करूंगा, फिर मेरे जैसा ही असुर बनेगा, पूरा राज्य संभालेगा, मेरी धुरा संभालेगा, तो ऐसा सोचने लगा। तो श्री प्रहलाद महाराज, उनके गुणों के बारे में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि प्रहलाद महाराज न्यस्त क्रीडन के बाले, यानी कि बचपन में ही सारे जो मोबाइल गेम, वीडियो गेम और अनेक प्रकार के जो गेम होते हैं उससे उनकी विरक्ति थी पूर्ण तरीके से। और पूर्ण मन कैसा था? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, यानी क्या कि सारा मन जो है जैसे कोई एक भूत ने झपट लिया हो, वैसे भगवान कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को झपट लिया था। सदैव कृष्ण का ही नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेकर भाव विभोर होते थे, आंखों से अश्रु उनके निकलते थे, और हिरण्यकशिपु ने उनको, जो शुक्राचार्य के दो बेटे हैं शंड अमरक, उनका प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लगा दिए थे, सोच के कि ये उनको राजकारण में क्या करेंगे, मेरे जैसे ही एकदम तरबेज बना देंगे। तो शंड अमरक ने शिक्षा देनी चालू कर दी अपनी अपनी। तो प्रहलाद महाराज को तो बिल्कुल ही रुचि नहीं थी ये सब विषयों में, कैसे प्रतिद्वंद्वी पे हमला किया जाए, कैसे राजकारण खेला जाए, कैसे दूसरों को फंसाया जाए। अभी ज़्यादा करके जो MBA होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा बनाया जाए। तो MBA माने क्या? मन बुद्धि अहंकार, केवल उसी में घूमते रहना। तो इस प्रकार से सिखाया जाता है। तो बहुत जन है जो ऐसा, हालांकि भक्त हैं, वो MBA करते हैं, तो क्या करते हैं? मन बुद्धि अहंकार भगवान को समर्पित करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, हाँ, जो बहुत बहुत शिक्षा लेकर भी सारा अपना सीख भगवान के चरणों में व्यतीत कर दिए। तो प्रहलाद महाराज को तो बिल्कुल ये कुछ पसंद नहीं था। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बुलाया, प्रहलाद बेटा बता, स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगा तुमको? तो प्रहलाद महाराज तो बहुत ही निष्पाप थे, और जो निष्पाप है और भगवान का भक्त है, तो हिरण्यकश्यप के जैसे असुर का भी उसके मन में बिल्कुल डर नहीं था। तो कहने लगे, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देही नाम। तो कहने लगे कि हे असुरवर्य, असुरों के राजा, वही सबसे अच्छा है। हाँ, बोलते हैं कि आप असत ग्रह, यानी कि केवल मैं, मेरा देह, मेरा कुटुंब, इसमें ही अपनी मति रखोगे तो सदैव उद्विग्न रहोगे। तो आप क्या करो, वनम गतो यद हरि माश्रय, तो वृंदावन जाओ और भगवान हरि की शरण ले लो। तो हिरण्यकश्यप को तो एक बड़ा धक्का लग गया, और सोचने लगा कि अरे ये कौन सा पाठ पढ़ा लिया ये शंड अमरक ने। तो उन्होंने बोला, अरे तुम लोग ठीक से पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? हरि का शरण लेने की बात कर रहा है मेरे शत्रु का। तो आप तो शंड अमरक प्रहलाद को कहने लगे, अरे किसने तुमको ये सब सिखाया, और कहीं तुम जाते हो क्या पढ़ाई करने के लिए? तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का नाम नहीं लिया, हाँ हाँ मुझे नारद मुनि ने पढ़ाया करके। उन्होंने क्या कहा कि अरे किसी लोहे को सिखाना पड़ता है क्या कि चुंबक के प्रति आकर्षित हो करके? तो बिल्कुल, हर जो कोई जीव है जिसका कुछ भी दिमाग बाकी है, वो तो कृष्ण के प्रति तो आकर्षित होगा ही होगा, वो अलग से सीख देने की क्या आवश्यकता है उसमें। ऐसा करके अब गुरु पुत्रों को बताया उसने। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को आकर बताया कि देखिए, आपका जो पुत्र है वो कहीं और से ही ये सब सीखा है, हमने तो ऐसी कोई ट्यूशन नहीं दी है उसको। तो ऐसा कुछ दिन और चला, उसके पश्चात क्या हुआ, वापस हिरण्यकश्यप ने उसको बुलाया और उसको पूछा, अभी अभी शायद से ये सुधर गया होगा ऐसा सोच के, बोला तुमने जो सीखा सबसे उत्तम तुमको क्या लगता है? तो प्रहलाद महाराज कहे आंख बंद करके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। तो कहने लगे, विष्णु की ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ये सबसे मुझे अच्छा लगा। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप वो इतना इतना क्रोधित हो गया कि प्रहलाद महाराज को कहने लगा कि अरे ये तुम हमारे कुल की कुठार हो, माने कि ये असुर जो कुल है, हमारा इतना प्रसिद्ध नामवंत असुर कुल है, उसके नाम पर तुम धब्बा हो। तो ऐसे ही होता है, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई भक्ति करना चालू करता है तो सोचते हैं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या अचानक से पहले जैसा हमारी तरह दारू नहीं पीता, हमारी तरह हम मांस नहीं खाता, क्या हो गया इसको, किसी भूत ने पकड़ लिया, क्या हो गया? जैसे शूर्पणखा जब ही रामचंद्र जी के पास आ गई तो अपने सारे परिवार का क्या देने लगी, पहचान देने लगी कि हम सब भाई बहन बहुत अच्छे हैं, रावण मेरा भाई है, बहुत बड़ा बलशाली है, लेकिन एक हमारा भाई बहुत ही विपरीत है, कहती है सदैव हाँ भगवान के बारे में सोचता है, मतलब ये कोई बात हुई, ऐसा कोई करता है? तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि ये क्या है, हाँ इसको तो जैसे कोई कोई कुठार का जो डंडा होता है वो कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, और कुठार काम क्या करती है, पेड़ को काटने का। तो बिल्कुल इसी प्रकार ये हमारे कुल में जन्म लेकर हमारे कुल का ध्वंस कर रहा है, मेरे बड़े भाई को जिसने मारा उसी का साथ दे रहा है। तो ऐसा सोचकर उसने आदेश दिया कि इसको अलग अलग प्रकार से शिक्षा दंड करो, देखता हूँ कैसे ठीक नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से दंडित करने का प्रयास किया गया और प्रहलाद महाराज हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण करते थे। जैसे उनको बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से फेंका गया और जहाँ जिसमें बहुत सारे जहरीले सर्प थे, ऐसे कुएं में उनको डाला गया, और फिर जो दिग्गज हैं, जो गज जो दिशाओं को संभालते हैं, उनको बुलाया गया उनके पैरों तले कुचल डालने के लिए प्रहलाद महाराज को। तो इन सारी अवस्थाओं में भगवान कृष्ण का उन्होंने क्या किया, आश्रय किया। भगवान क्या कहते हैं भगवद्गीता में, नमे भक्ता प्रणश्यति, यानी जिसने मेरी एक बार शरण ली उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान सर्व अवस्था में अपने भक्तों को क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को इस प्रकार से विष्णु का भक्त बनते हुए देखकर हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया और सोच रहा था इतना सारा करके भी कुछ हो नहीं रहा है। तो अपनी बहन को बुलाता है, होलिका को, और होलिका कहती है कि भैया तुम चिंता मत करो, हाँ मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है, कि मैं आग से नहीं जल पाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये प्रहलाद को थोड़ा सा उसको थोड़ा सा फंसा कर उसका मैं काम तमाम कर देती हूँ। तो दूसरे दिन प्रहलाद को बुलाने लगी, बोलने लगी कि बेटा प्रहलाद अपने चाची के गोद में आके बैठ जा, हाँ मैं तुमको अलग अलग मिठाई खिलाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो प्रहलाद जी हाँ क्या किए, उनके गोद में आकर बैठ गए और उसने क्या किया, तो चारों तरफ जो अग्नि जला दिया और अग्नि के बीच में प्रहलाद महाराज हैं और भगवान का सतत नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ देखते ही देखते होलिका जल के राख हो गई, जिसको इतना वरदान था वो वरदान कुछ काम नहीं किया, होलिका जल के राख हो गई। और हिरण्यकश्यपु बाहर अत्यंत घबरा गया, बोला क्या हुआ, मेरी बहन की तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ये प्रहलाद ही हरे कृष्ण बोल रहा है। बोलता है कि बेटा क्या हुआ, हाँ तो अंदर तुमको कैसा लग रहा है। तो कहता है कि तातेश वन्नी पवनेरी तो भी नमाम दहन दहत्यत्र समंति तो हम। तो बोल रहे पिताजी ये जो चारों ओर की अग्नि है, हाँ मेरी दहन नहीं कर रही है, पश्चामि पद्माल अस्तराणी, कहते हैं कि ऐसे लग रही कि चारों ओर से कमल का गंध लेकर एक शीतल वायु घूम रही हो। तो ये सब किसने किया, भगवान नरसिंहदेव ने ही किया ये सब कुछ। श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो ऐसा नहीं कि आज के दिन आविर्भाव हुए, उससे पहले तो प्रहलाद महाराज तो अपने ही लक बाय चांस बोलते हैं ना, वैसे बच गए, वैसा नहीं है। तो सदैव प्रहलाद महाराज के साथ ही थे, प्रहलाद महाराज के हृदय में ही थे, बस वो स्तंभ से बाहर आ गए वो बस हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए, वरना तो प्रहलाद महाराज के सदैव संग में थे। भगवान क्या कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तु अहम। भगवान का निवास स्थान कहाँ पे है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये पिवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, यानी कि मैं मुझे वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास करो वहाँ पे नहीं मिलूंगा, योगियों के हृदय में ढूंढने का प्रयास करो नहीं मिलूंगा, जहाँ पे मेरे नाम का संकीर्तन होता है वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, वैष्णव मेरे प्राण है। तो पांडवों के प्रति भी जब दुर्योधन द्वेष कर रहा था तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को क्या कहा, तुम्हारा पांडवों के प्रति द्वेष यानी मेरे प्रति द्वेष, अगर तुम पांडवों के प्रति प्रेम करते हो तो मुझसे भी प्रेम करते हो, वरना नहीं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को हर समय बचाया, और जो गुरुपुत्र है उन्होंने सलाह दी हिरण्यकशिपु को कि शुक्राचार्य आने तक आप कुछ और एक्शन मत लीजिए, इधर ही आपके जो योजनाओं को स्थगित कर दीजिए, बाद में शुक्राचार्य बोलेंगे उस वैसा हम करेंगे। तो चलो भक्त को तो मिल गया और कुछ दिन गुरुकुल में रहने का अवसर, तो उसका उन्होंने क्या उपयोग किया, सारे जो असुरों के बालक छात्र थे उनको प्रचार करना चालू कर दिया। तो सारे असुर बालकों को इकट्ठा कर लिया, हाँ गुरुपुत्रों ने कहा प्रहलाद तुम अभी मॉनिटर हो, देखो कोई कोई बदमाशी नहीं कर रहा है बच्चा। तो प्रहलाद महाराज बोले ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, और सबसे पहले शिक्षा देनी चालू कर दी। क्या चालू कर दिया, सबसे पहले उनको कहा कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हा। तो कहा कि भगवत भक्ति जो है वो क्या करनी चाहिए, कुमार उम्र से ही करनी चाहिए, कुमार के वय में ही करनी चाहिए, कुमार यानी कि पाँच साल की उम्र। ऐसा नहीं कि अभी मैं बूढ़ा हो गया अभी तब तक मैं अवसर प्राप्त करने के बाद ही मैं भक्ति करूँगा, ऐसा नहीं है। तो क्यों बोल रहे कौमारम आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञ यानी कि बुद्धिमान, कोई व्यक्ति है जो बता सकता है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त करूँगा उससे पहले नहीं मरूँगा, कोई भी किसी भी अवस्था में मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए कौमारम आचरित प्राज्ञो। कौमार क्यों कहा, तब से थोड़ा समझ आना चालू हो जाती है, तब से प्राज्ञ यानी कि बुद्धिमान। धर्मान भागवतामि इह, धर्म को पालन करो, धर्म को माने कौन सा, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म कौन सा धर्म, भागवतान धर्मान भागवतानि ह यानी भगवत धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम यानी कि कृष्ण भक्ति का धर्म, उसका पालन करो। क्यों, दुर्लभम मानवम जन्मम, ये जो मनुष्य जन्म है वो अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मिलता है, ऐसा कुत्ता कभी सोच नहीं सकता चलते चलते, अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है क्या उपाय करना चाहिए, क्या मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, उसका जो सॉफ्टवेयर जो भी उसका हार्ड डिस्क है जो भी सिस्टम है उसका, वो प्रोग्रामिंग की जा चुकी है। हाँ जन्म जो है आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा और कुछ उसमें आ नहीं सकता, और कुछ आता है तो वायरस समझा जाते हैं उसमें सिस्टम में। तो आप दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, फिर भी उसमें आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर जब प्राप्त होता है, अगर मान लो पूर्ण भी ना हो तो भी भगवान वचन देते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस जन्म में अगर हम बहुत धन कमाएं क्या हम मरने से पहले बोल सकते हैं कि ये मेरा जो बैंक अकाउंट है ना अगले जन्म में इसी अकाउंट में मेरा पैसा जमा कर देना, ऐसा हम बोल नहीं सकते। लेकिन भक्ति का जो अकाउंट है वो अपने आप क्या होता है, ट्रांसफर होता है अगले जन्म में, वही हमारे साथ वो भक्ति का जो अकाउंट है नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जब तक भगवत धाम तक नहीं जाएंगे तब तक वो ट्रांसफर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, घटता भी नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो बढ़ता जाएगा उसमें से। तो ये भगवान ये प्रहलाद महाराज सारे असुर बालकों को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कोति प्रयासो असुर बालकान हरे उपासने स्वे हृदि धिष्णताम स्थिता। तो कह रहे हैं कि भगवान की उपासना करने में क्या कठिनाई है, यूं त्यों कुछ भी दे दो भगवान को संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि इतना ही धन दे दो, इतनी ही उपासना करो, इतना ही वो करो, जो भी आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरोतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो कह रहे भगवान इतने भाव विभोर होते हैं भक्ति से कि बोल रहे हैं समझ नहीं पाते कि क्या अर्पण किया है, वो खा जाते हैं, बोलते पत्रम ठीक है, तोयम भी ठीक है, बंगाली में तो पानी को भी खाता हूँ करके बोलते हैं ना हाँ जल खावो तो पत्रम पुष्पम फलम भी ठीक है, खाया तो ठीक है, फूल कोई खाता है क्या, फिर भी भगवान बोलते हैं फूल को भी मैं खा जाता हूँ, अश्नामी यानी कि खाना, गृणामी नहीं बोल रहे, अश्नामी बोल रहे तो भगवान इतने भाव विभोर होते हैं, इतना सरल है भगवान की सेवा करना। तो ऐसा सब जब ही उनको बताने लगे असुर बालकों को, तो गुरुपुत्रों ने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया हिरण्यकशिपु को, देखो देखो आपका बेटा, हमने तो कुछ सिखाया नहीं, अपने आप से ही ये सारे असुर बालकों को जाकर उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। तो हिरण्यकशिपु वापस प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं और इस बार इतने क्रोधित होते हैं और बहुत उनको क्या करते हैं, वाक्य से भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं कि अरे कुल की कुठार, वापस बोलते हैं तुमको आज मैं यमराज के पास भेज दूंगा। तो सरस्वती का अर्थ क्या है इधर, अरे संसार को छेदन करने वाली कुठार, यमराज भी तुम्हारा संग करने के लिए उत्सुक है क्योंकि सरस्वती देवी जो है वो क्या है, भक्त के प्रति किसी भर्त्सना को स्वीकार नहीं कर सकती। तो कहां से आया तुम्हारा ये बल करके पूछते हैं। तो प्रहलाद महाराज करते हैं, जहां से आपका बल आया वहीं से मेरा ही बल आया है, भगवान के बल के बिना और कहां से, और ये बल कहां से आ सकता है। तो हिरण्यकशिपु वहां पे अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, अच्छा तुम्हारे भगवान क्या सब जगह पे खड़े हैं, बोल रहा है इतनी बड़ी बकवास कर रहा है वो भी मेरे सामने। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ सब जगह पे स्थित है मुझे, तो कह रहे हैं कहाँ, वो स्तंभ में स्थित है, तो कह रहे हैं हाँ मुझे दिख रहे हैं, स्तंभ में आने से पहले ही दिख रहे हैं कहता है। तो हिरण्यकशिपु कह रहे थे मुझे तो नहीं दिख रहे, प्रहलाद कहते हैं मुझे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु के हृदय में बहुत सारी भावनाएं एकत्रित आ रही है, एक तो भय की भावना आ रही है, अरे इसको कैसे दिख रहे हैं, और दूसरी क्रोध की भावना, तीसरी आश्चर्य की भावना, अनेक अनेक भावनाओं का मिश्रण उसके हृदय में है अभी। और फिर वो मुष्टि से प्रहार करता है और फिर अवतीर्ण होते हैं, जय श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो उनके आविर्भाव के ऊपर एक हमने कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया है, तो आपको सुनाने का कुछ साहस करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। तो ये सारी जो नरसिंहदेव की लीला है तो उसको हमने एक पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। तो एक बार हम श्रीरंगम गए थे, श्रीरंगम में ही जो रंगनाथ जी का मंदिर है और उसके आगे एक पटरी क्रॉस करके ही नरसिंहदेव का मंदिर है, तो उसमें नरसिंहदेव जी का बहुत एक राजा की तरह उपासना होती है, यानी कि जब भी दर्शन खुलते हैं उससे पहले जोर जोर से ढोल बजते हैं, ताशे बजते हैं, जैसे कोई राजा आता है ना, ढुम 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 धड़म 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 ऐसा ढोल बजती है और बहुत सारे वाद्य बजते हैं। तो वो हमारे उसको सुनकर एक थोड़ी सी हमको वहाँ से हमने कुछ प्रेरणा ली और ये कुछ पंक्तियाँ अभी सादर कर रहे हैं। नरहरि की आरती, नरहरि की आरती, नरहरि की, नरहरि की, नरहरि की आरती, नरहरि 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 की आरती, नरहरि 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 की आरती। धड़म धड़म ये ढोल बाजे झनन झनन झांझरे, धड़म धड़म ये ढोल बाजे झनन झनन झांझरे, घोर घोर शंख बाजे मंदिर में आजरे, घोर घोर शंख बाजे मंदिर में आजरे। नरहरि की आरती, नरहरि की आरती, नरहरि की, नरहरि की, नरहरि की आरती। दैत्यराज को प्रह्लाद हित की बात कह दिया, दैत्यराज को प्रह्लाद हित की बात कह दिया, पुत्र के उपदेश से कुपिता कुपित हो गया, पुत्र के उपदेश से कुपिता कुपित हो गया। क्या तेरा भगवान स्तंभ में भी विद्यमान है, क्या तेरा भगवान स्तंभ में भी विद्यमान है। हाँ मेरा भगवान तो अचिंत्य शक्तिमान है, हाँ मेरा भगवान तो अचिंत्य शक्तिमान है। नरहरि की आरती, नरहरि की आरती, नरहरि की, नरहरि की, नरहरि की आरती। स्तंभ निकट दैत्यराज वार को तैयार है, स्तंभ निकट दैत्य राज वार को तैयार है, जैसे मंद श्वान की ही सिंह को ललकार है, जैसे मंद श्वान की ही सिंह को ललकार है, वज्र दंत ताम्र नेत्र भयकरी ये जीभ है, वज्र दंत ताम्र नेत्र भयकरी ये जीभ है, असुर राज का तो आज मृत्यु ही समीप है, असुर राज का तो आज मृत्यु ही समीप है, नरहरी की आरती नरहरी की आरती नरहरी की नरहरी की, घोर गरज गरज के नृसिंह प्रकट हो गए, घोर गरज गरज के नृसिंह प्रकट हो गए, भृत्य के ही सर्व वाक्य स्वामी सत्य कर दिए, भृत्य के ही सर्व वाक्य स्वामी सत्य कर दिए, नरहरी की आरती नरहरी की आरती नरहरी की नरहरी की, संधि समय द्वार पे ही गोद में बिठा लिए, संधि समय द्वार पे ही गोद में बिठा लिए, हिरण्यकशिपु का वक्ष नख से भिन्न कर दिए, हिरण्यकशिपु का वक्ष नख से भिन्न कर दिए, नरहरी की आरती नरहरी की आरती नरहरी की नरहरी की, ब्रह्म रुद्र इंद्र चंद्र भय से भीत भ्रांत है, ब्रह्म रुद्र इंद्र चंद्र भय से भीत भ्रांत है, एक ही प्रह्लाद से नृकेसरी सुशांत है, एक ही प्रह्लाद से नृकेसरी सुशांत है, नरहरी की आरती नरहरी की आरती नरहरी की नरहरी की, दैत्य महाकाल सर्व विघ्न के विनाश है, दैत्य महाकाल सर्व विघ्न के विनाश है, चरण कमल में मति जो दास की सदा रहे, चरण कमल में मति जो दास की सदा रहे, नरहरी की आरती नरहरी की आरती नरहरी की नरहरी की नरहरी की आरती, नरहरी नरहरी नरहरि की आरती, नरहरि 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 की आरती, श्री प्रह्लाद महाराज की, श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो इसमें एक दो जो पंक्तियों का थोड़ा स्पष्टीकरण भी करूंगा, बाकी सब तो सरल है बहुत सारी पंक्तियां। तो एक जगह पे कहा है कि संधि समय पे द्वार पे ही गोद में बिठा लिए, और पहले उससे घोर गरज गरज के नृसिंह प्रकट हो गए, भृत्य के ही सर्व वाक्य स्वामी सत्य कर दिए। तो नृसिंह प्रकट हो गए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्तद्भुतरूपम उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। तो कह रहे हैं कि अपने भृत्यों के वचन सत्य करने के लिए, निज भृत्य भाषितम सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो उसके उसकी थोड़ी व्याख्या हम करेंगे, कौन से निज भृत्य का वाक्य भगवान नरसिंहदेव पूर्ण किए। तो भगवान की लीलाएं इतनी विचित्र होती है और अद्भुत होती है कि एक समय सारे काम भगवान कर देते हैं। अनेक अनेक भक्तों ने भृत्यों ने अनेक अनेक वाणी की थी, और वो सारी वाणी क्या कर दी, नरसिंहदेव भगवान ने सत्य कर दी। तो यहाँ पे कह रहे हैं निज भृत्य भाषितम, तो सबसे प्रथम तो किसकी वाणी, प्रह्लाद जी की वाणी सत्य कर दी। प्रह्लाद जी ने कहा था स्तंभ में भी उपस्थित है, तो वो सत्य करने के लिए सर्व जगह उपस्थित है, यानी कि स्तंभ में भी उपस्थित होने चाहिए, तो वो सत्य करने के लिए ऐसा रूप नरसिंहदेव जी ने धारण किया, वहां से वो प्रकट हो गए। तो एक भृत्य हो गए प्रह्लाद महाराज, उनका वचन सत्य कर दिया। फिर दूसरा किन्होंने कहा था, कुमारों ने कहा था कि आप जो ये जय विजय है, तीन बार असुर बनेंगे और भगवान से उनकी मृत्यु होगी, तो उनका वचन कुमारों का वचन सत्य करने के लिए ऐसा घोर रूप धारण करके नरसिंहदेव प्रकट हो गए। तीसरा किन का कहा था, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु ने मांगा था मुझे इससे मृत्यु ना हो, मुझे उससे मृत्यु ना हो, कोई प्राणी ना मारे, कोई नर ना मारे, हाँ कोई अस्त्र से ना मारे, कोई जीवित या मृत व्यक्ति से ना हो, मेरी ना मेरा ना मेरी वध हो, दिन में ना मारे, शाम रात को ना मारे इत्यादि। तो उसका अगला तो इसलिए संधि समय पे, संधि समय द्वार पे ही, द्वार यानी कि घर के बाहर भी नहीं होता, अंदर भी नहीं होता, गोद में बिठा लिया, जमीन पे नहीं, आसमान में नहीं, लेकिन गोद में बिठा लिया। आपने वापस एक बार एक जगह पे और देखा रहेगा कि कैसे इसी प्रकार इसी वाक्य की रक्षा कर दी गई, भगवान कृष्ण ने की थी इस बार अर्जुन की रक्षा करने के लिए, इसी वाक्य का उपयोग किया था। पता है जयद्रथ का सर किसके अगर नीचे गिर गया तो गिराने वाले की मृत्यु होगी, ऐसा शिवजी ने वर दिया था। तो भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे रक्षण किया अर्जुन का, उसका पिता जो है जयद्रथ का कहीं दूर जाके तपस्या कर रहा था, तो कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने क्या किया, जरा जो जो जयद्रथ का सर उड़ाकर, उसका सर कहाँ पे गिर गया, उसके पिताजी के गोद में गिर गया, तो डर के उसने ऐसा उछाल दिया, तो हाँ और वो वही उसी का कपाल मोक्ष हो गया, वो पिता का ही कपाल मोक्ष हो गया उसके। तो यहाँ ये वापस एक बार यहाँ पे नरसिंह देव ने उसी कल्प उसी जो संकल्पना का उपयोग किया, भगवान कृष्ण ने भी आगे उसी संकल्पना का उपयोग किया, तो गोद में बिठाया और नख से मारा, हिरण्यकशिपु का वक्षक नख से भिन्न कर दिया, यानी कोई अस्त्र का उपयोग भी नहीं किया, अस्त्र है भी और नहीं भी है। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का भी वचन सत्य कर दिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु भी तो निज भृत्य है जय विजय के रूप में। और ब्रह्मा जी अस्तु अस्तु कहने लगे, तथास्तु तथास्तु, एवं भवतु एवं भवतु, तो उनका भी तो वचन सत्य करना पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी का भी वचन सत्य कर दिया ऐसा करके। और नारद मुनि ने कहा था इंद्र को कि इसकी जो माता है उसका तुम उसकी तुम हत्या मत करना, चाहे उसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बेटा भी क्यों ना हो, क्योंकि वो आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बनेगा और इसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, ऐसा नारद मुनि ने वचन दिया था। तो नारद मुनि के भी वचन सत्य करने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और निज भृत्य भाषितम, तो निज भृत्य के दो अर्थ हो सकते हैं, निज भृत्य यानी स्वयं का भृत्य, या फिर निज और भृत्य, स्वयं का वाक्य और भृत्य का वाक्य सत्य करने के लिए। नरसिंहदेव का कौन सा वाक्य सत्य करने के लिए, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, वो कहते हैं कि भवामी नचिरात पार्थ, जो मेरा स्मरण सदैव करता है, प्रहलाद महाराज तो स्मरण के लिए ही सबसे प्रसिद्ध है, तो उसका मैं भवामी नचिरात पार्थ, तो उसका मैं समुद्धरता बनूंगा, या ना मैं भक्ता प्रणश्यति, ये स्वयं का वाक्य सिद्ध करने के लिए सत्य करने के लिए। तो पांच वृत्तियों का वाक्य सत्य कर दिया एक ही बार में। कौन से वापस आप बता सकते हैं, किस किस का, पहले तो प्रहलाद महाराज का कौन सा वाक्य, सब जगह पे स्थित है भगवान तो ये सत्य करने के लिए, फिर हाँ ब्रह्मा जी का कौन सा वाक्य, हाँ बेनेडिक्शन जो दिए थे हिरण्यकशिपु को वो, और हिरण्यकशिपु ने मांगे थे तो मांगने वाले और देने वाले दोनों को वाक्य सत्य कर, तो दोनों भृत्य इधर ही आ गए। और किसका, कुमारों का, कुमारों ने क्या वचन दिया था, क्या वाक्य था उनका, कि तीन बार आप आएंगे और आपकी मृत्यु भगवान आपका उद्धार कर देंगे करके। और पांचवा भक्त कौन है, नारद मुनि ने क्या वचन दिया था, क्या कौन सा वचन सत्य करने के लिए, भगवान रक्षा करेंगे, बेटा महाभागवत बनेगा और भगवान रक्षा करेंगे। और अंत में किसका वचन सत्य कर दिया, स्वयं का, हाँ निज भृत्य भाषितम, निज और भृत्य दोनों का भृत्य, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है भृत्य के ही सर्व वाक्य स्वामी सत्य कर दिए। और अंत वाला लाइन फिर से एक बार बोलूंगा, दैत्य महाकाल सर्व विघ्न के विनाश है, दैत्यों के लिए महाकाल, सो हमारे हृदय में भी बहुत सारे दैत्य बैठे हुए हैं। तो एक कथा में परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि एक हमारे हृदय में छोटा हिरण्यकशिपु भी बैठा है और छोटा प्रहलाद भी बैठा है। तो प्रहलाद चाहता है कि भगवान की भक्ति हो और हिरण्यकशिपु चाहता है कि उसको कैसे दबोचा जाए। महाराज ने दूसरे एक कथा में कहा था कि हृदय में एक छोटा रावण भी बैठा है और छोटा हनुमान भी बैठा है। ऐसे भी कहा था। तो हमको प्रार्थना ये करनी है कि ये दैत्य महाकाल सर्व विघ्न के विनाश है किसके लिए, लेकिन चरण कमल में मति जो दास की सदा रहे, जिसकी मति भगवान के चरण कमल में सदा रहती है, हाँ उसी को भगवान क्या कहते हैं, जो अंतिम हमारा प्रयोजन है वो प्राप्त करा देते हैं। केवल समय लगे तो समय पर भगवान को पुकारना, हाँ ये इससे उससे भक्ति नहीं होगी, उससे क्या होगा, सौदा होगा कि चलो मैं आपका इतना करता हूँ, आप मेरा उतना कर दो। तो उसमें एक बताते हैं कि एक व्यक्ति दान पेटी में भगवान के सामने दान डाल दिया 100 रुपये, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक ऐसा किस्सा है, ऐसे कोई सत्य घटना नहीं है, शास्त्र की नहीं है लेकिन एक विनोद के रूप में। तो कहते हैं तो ये व्यक्ति भगवान के वहाँ पर चला गया और बहुत सारे वो करने लगा, क्या करने लगा, बहुत सारे प्रस्ताव करने लगा कि मुझे अभी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अभी फल चाहिए, मुझे अभी शैया चाहिए। और कोई भगवान के पार्षद कुछ पूछते थे तो कहता था कि अरे मैंने 100 रुपये दान किया है, भूल गए क्या फिर वापस कुछ मांगता था, फिर भगवान के पार्षद बोलते अरे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो अरे मैंने 100 रुपये दान किया है, भूल गए क्या। तो अंत में भगवान उसके कहते हैं अरे उसको अपने 100 रुपये दे दो और बोलो वापस तुम चले जाओ तो इस प्रकार से हमको भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए कि चलो हम कुछ डाल रहे हैं तो चलो भगवान के ऊपर कितना बड़ा उपकार हो गया, अभी तो भगवान सदैव के लिए ऋणी हो गए मेरे अभी मैं जैसा बोलूँगा भगवान करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा कैसा होना चाहिए, चेतना प्रहलाद महाराज की तरह होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज को भगवान ने स्वयं पूछा तुमको क्या चाहिए, वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अरे भगवान मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्या यही आपने मुझे समझा, हाँ नस भक्ता सवई वणिक, जो केवल आपके लाभ के लिए आपकी पूजा करता है वो क्या है, भक्त नहीं है, वो वणिक है। वणिक यानी क्या, हाँ बिजनेसमैन, हाँ जब जितना आदान प्रदान में जितना लाभ है उतने देर आदान प्रदान करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि चाहो, भगवान कहते हैं कि चलो अगर कोई भौतिक इच्छा है तो भी मेरी सेवा करो, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न ये जो तो पुरुषम परम। तो वो भी ऑप्शन देके रखा है कि अगर वो नहीं हो रहा तो ये करो, वो नहीं हो रहा तो ये करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज, अभी कुछ समय है अपने पास, तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की एक 5-10 मिनट तो होंगे तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की जो प्रार्थना करते हैं उसमें से कुछ प्रार्थना, एक दो प्रार्थना हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि वो जब तक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना चर्चा नहीं करते हैं तब तक वो कथा पूर्ण नहीं है तो ऐसे कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हैं वो प्रातस्मरणीय जिनको कहते हैं, वैसी प्रार्थना है, सदैव उसका स्मरण हमको होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो कह रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोपि पद्यत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि जिसकी मति केवल अपनी भौतिक सुविधा बढ़ाने के लिए रहती है तो उसकी कभी कृष्ण में मति नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि ऐसे जिसकी भौतिकतावादी व्यक्ति का क्या हाल होता है, चाहे वह स्वर्ग भी चला जाए तो भी वो किस समान है, पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, यानी कि किसी ने चूस चूस के वो गन्ने का रस निकाल दिया, या गन्ना तो फिर भी अच्छा होता है, मान लो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई कुत्ता है हड्डी के पीछे भागता है और हड्डी चबाता है, फिर बाद में दूसरा कुत्ता उसके पीछे भागता है वो हड्डी को प्राप्त करने के लिए, उससे बहुत क्या करता है, संघर्ष करता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज क्या बोलते हैं, मुझे एक मिनट दीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज अ डॉग इट्स डॉग वर्ल्ड, प्रभुपाद बोलते हैं जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खाता है, ये जगत है भौतिक जगत, यानी कि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते तो भौतिक जगत में साधारण लोग क्या करते हैं, जैसे एक कुत्ता दूसरे के कुत्ते के साथ एक हड्डी के लिए झगड़ा करता है और दोनों जख्मी हो जाते हैं, और जख्मी होने के बाद जीत जीत भी गया तो क्या मिलता है उसको? उपहार के तौर पर हड्डी मिल जाती है। तो उससे क्या लाभ है? पुनः पुनः चर्वित चरवाणा नाम। और आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप किससे संतुष्ट हो सकते हैं? मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय। तो चाहे हमारे पास कुछ ना हो, धन ना हो, बहुत सारे फेसबुक में फॉलोअर्स ना हो, मन्ये धनाभिजन रूप बहुत सुंदर रूप ना हो हमारा, मन्ये धना अभिजन रूप तप बहुत ज्यादा तप भी ना हो, श्रुत बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखी भी ना की हो, ओज बहुत ज्यादा इंद्रियों की शक्ति भी ना हो, बुद्धि योगा यानी कि बहुत बहुत बड़े योगी भी ना हो हम, और बहुत ज्यादा बुद्धि भी हमारी ना चलती हो, लेकिन फिर भी इन सब से भगवान क्या नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। भगवान किससे? भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय, कि भगवान को संतुष्ट करने की कितनी हृदय में हमारी इच्छा है उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और एक अंत में एक श्लोक प्रहलाद महाराज जी का हम, और उसके बाद हम विराम देंगे। तो अंत में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नैवोद्विजे पर दुरत्तरतेय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गान महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेत विमुख इंद्रियार्थम माया सुखम भरम उद्वहतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे लिए मेरी चिंता नहीं है, मैं तो भगवान का लीला गुण गाकर संतुष्ट हूँ और आराम से इस जगत को पार कर जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता किसकी है? मेरे जैसे लोगों की चिंता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विमुख चेतस इंद्रियार्थम, जो आपके विमुख हैं और विमूढ़ हैं उनका जब तक उद्धार नहीं होता तब तक मैं वैकुंठ भी वापस आना नहीं चाहता। और बिल्कुल यही जो प्रहलाद महाराज का जो 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 भावना है उसी भावना को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, तो संपूर्ण जगत में अभी राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे, राधा दामोदर मंदिर का उल्लेख करते समय प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि ये और दूसरा कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जगत का केंद्र है। केंद्र माने कि यहीं से आध्यात्मिक सारी आध्यात्मिक लीलाओं का की सृष्टि यहीं से होती है, क्यों? कहाँ? वहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि है, वो सेवा कुंज है, वहाँ पे नित्य राधा कृष्ण की लीला होती है। ऐसी जगह को छोड़कर कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क में जो घेटो होते हैं, घेटो यानी कि झोपड़पट्टी, और वहाँ पे लोग भी कैसे थे, नशा करके दारू पीकर उधर ही मल मूत्र विसर्जन करके उधर ही सो जाते थे। ऐसे लोगों में जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, जिनको कुछ भी मालूम नहीं, सोचिए, उनको भागवत धर्म का प्रचार किया, और उसके बाद वही नहीं तो सारे सब जगह पे सब विश्व के कोने कोने में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो आज प्रहलाद महाराज जी के ही अनुयायी श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो आज के दिन हम इन सब के गुणों का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय की जो भी कोई दुष्प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाए, और जो भगवत प्रवृत्ति है, जो भक्ति की प्रवृत्ति है, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है, उस वो दिन ब दिन हमारी बढ़ती जाए। जय श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बहुत बहुत